अगर होता है तो मुझे बताओ, मैं उसको छू के देखूंगा। ठीक है, मेरी आंख ठीक नहीं है, मैं छू के तो देख सकता हूं। चलिए, आप उसको छू के नहीं बता सकते हैं तो लाइए, मैं टेस्ट करके देख लेता हूं कि वो प्रकाश किस टेस्ट वाला है, किस स्वाद वाला है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, चरपरा है, कसायला है, जितने टेस्ट हो सकते मैं टेस्ट कर लूंगा। अच्छा, तो नहीं है अगर ऐसा तो थोड़ी आवाज करके बताइए उस प्रकाश की, मैं सुन लूंगा। अब ऐसे व्यक्ति को आप कैसे कन्विंस करेंगे? उसके तो उपाय एक ही है कि उसकी आंख का ऑपरेशन कर दिया जाए, है ना? उसको दृष्टि अगर मिल जाए। इसका बहुत प्यारा जवाब दिया था विदिशा में एक 10वीं कक्षा के बच्चे ने अपने गुरुजी को, जब वे गुरुजी और दिगंबर मुनियों के नग्नता को लेकर के और मखौल उड़ा रहे थे, तब उसने बहुत देर तक तो बर्दाश्त किया और फिर उसने खड़े होकर कहा, गुरुजी, साधु और मुनि को देखने के लिए आंख चाहिए, उसके बिना नहीं दिखाई पड़ता, बाकी तो संसार। इतना बड़ा उसने जवाब दे दिया था कि आंख चाहिए देखने के लिए, वरना तो किसी में कुछ नहीं दिखेगा आपको। आपके पास अगर उस दृष्टि नहीं है उसके देखने की, आपके अंदर श्रद्धा है अगर, तो आपको वही चीज अच्छी दिखाई पड़ेगी। आपके अंदर द्वेष है तो वही चीज आपको बुरी दिखाई पड़ेगी। आपको किसी चीज से बहुत प्रीति है तो आपको उसके गुण नहीं, अवगुण नहीं दिखेंगे, उसके गुण ही गुण दिखाई पड़ेंगे। ये हमारी दृष्टि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, ऐसा अपन कहते हैं। इसलिए पहली स्थिति में तो उनको जवाब देने की आवश्यकता नहीं, पर अपने आप को जवाब तो मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमारे पास जवाब तो जरूर होना चाहिए। जवाब यह है कि न्यूडिटी इज ए ट्रांसपेरेंसी। एक्चुअली जैन दर्शन की नग्नता क्या है? नग्न तो पशु भी रहते हैं, नग्न तो अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल जावे तो असभ्यता का प्रतीक माना जाए, लेकिन जैन साधु की नग्नता और बाकी सामान्य रूप से जो न्यूडिटी है उसमें क्या डिफरेंस है? तो हमारे हमें उसकी फिलॉसफी मालूम होना चाहिए कि इसके पीछे कौन सा दर्शन छिपा हुआ है। तो दर्शन यही है कि ये एक तरह की बाहर भीतर की स्पष्टता और निर्मलता का प्रतीक है। न्यूडिटी इज ए ट्रांसपेरेंसी। ये जीने का एक, लिविंग का एक आर्ट है कि हम जैसे बाहर हैं वैसे ही भीतर भी हैं। जो व्यक्ति अगर अपने मन में विकृतियां रखेगा तो वो व्यक्ति न्यूड नहीं रह सकता। ये बहुत मुश्किल है। वो अपनी उन कमजोरियों को, अपनी उन विकृतियों को छिपा नहीं सकता। वस्त्र हमने अपनी कमजोरियों, अपनी विकृतियों को छिपाने के लिए पहने हैं। जिसके भीतर कोई विकार नहीं है, जो निर्विकार है, उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। असल में कई बार बाहर से दिगंबर साधु जो नग्न है वो हमारे मन में वैराग उत्पन्न करता है, लेकिन आज आधे अधूरे कपड़े पहने वाले लोग ज्यादा वल्गरिटी फैलाते हैं वनस्पति के, कि एक न्यूड सैंट उतनी वल्गरिटी नहीं फैलाएगा जितनी कि आधे अधूरे कपड़े पहने वाले लोग ज्यादा वल्गरिटी, ज्यादा अश्लीलता का प्रदर्शन करते हैं। हमें उनको अगर सीधा जवाब देना है तो फिर हम ये जवाब दे सकते हैं कि आप न्यूडिटी के मायने समझते क्या है। न्यूडिटी के मायने ट्रांसपेरेंसी है, न्यूडिटी के मायने वल्गरिटी नहीं है। जब काका कालेलकर भगवान ऋषभ, भगवान बाहुबली की प्रतिमा के दर्शन करने गए, लोगों ने कहा था कि वहां तो देख करके आपको अच्छा नहीं लगेगा, और उन्होंने लिखा कि मैंने तो दुनिया में अच्छे कपड़े पहने हुए लोगों की आंख को खराब होते देखा है, लेकिन वहां तो वस्त्र एक भी नहीं था, लेकिन उनकी वितराग मुद्रा देख करके मेरे चित्त की जितनी मलिनता और कलुषता थी, जितनी मेरी वासनाएं थी, वो सब समाप्त हो गई, मेरा मन अत्यंत निर्मल हो गया। ठीक ऐसे ही जैसे कि किसी चट्टान पर झरना गिरता है और निर्मल जल नीचे फुहार की तरह फैलता है, ऐसे ही मेरे मन में भी निर्मलता की फुहार फैल गई। ऐसा उन्होंने काका कालेल करने, जबकि जैन नहीं थे वो। चलिए, दो आंसर हो गए। तीसरा आंसर ये है कि कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी धर्म हो, उसमें नग्नता को सबसे श्रेष्ठ माना है। वेदों में और उपनिषद में, उपनिषद में दो उपनिषद हैं, आप हवाला देना चाहें, कोई नॉन जैन अगर पूछता है तो आप कह दें कि क्या जावाल उपनिषद और परमहंस उपनिषद आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो पढ़िए। उसमें लिखा है कि कौपीनम कटिसूत्रम पात्रम जटाजूटम सर्वम उत्सृज्य जलम भू स्वाहा इति विसृज्य, ऐसा कह करके और इन सबको छोड़ करके आत्मज्ञान पूर्वक जो यथाजात विचरण करता है वही आत्मा का अनुभव कर सकता है। ये उसके वाक्य अपने घर के नहीं है, ये जैन ग्रंथों के नहीं, ये उपनिषद के हैं, जावाल और परमहंस उपनिषद के। तो हम उनको ये कह सकते हैं कि ये परंपरा दूसरी एक और है। इलाहाबाद और बड़े बड़े जगहों पर भरने वाले कुंभ में जो अखाड़े आते हैं वो किसके हैं? उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी है? उनके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है? उनकी अपनी बलगड़ी देखी आपने? आप उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते? आपको उस पर भी टिप्पणी करनी चाहिए अगर आप एक दिगंबर जैन साधु की जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, जिसके अंदर विकारों से रहित अवस्था है, तो ऐसे ही आपको फिर उनके उनके अंदर देखना चाहिए जो कि स्मैक तक का यूज कर रहे हैं। लिकर तो बहुत सामान्य सी चीज है, वे उन सब चीजों का मैंने, और कार ड्राइव कर रहे हैं न्यूड होने के बाद भी, तो वो न्यूडिटी जो है वल्गरिटी की तरफ ले जाने वाली है। ये न्यूडिटी तो हमारे अंदर एक निर्मलता देने वाली है। ये हम दोनों को कंपेयर करके बता दें। अगर कोई मोमडन है तो उससे कहें कि अकबर के जमाने में जो सरमद और दूसरा एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा अब भी, दो लोग हुए हैं उनके बारे में कभी पढ़ा है? वो कहेगा क्या पढ़ा है? यही कि उन दोनों ने भी नग्न रह करके साधना शुरू की थी, तो लोगों ने चिढ़ करके और अकबर से कहा था कि इन दोनों को आप कपड़े पहनने को बाध्य करें। तो जब उनको बाध्य किया गया सरमद को, तो उन्होंने जवाब दिया कि ऐ बादशाह, जिसने तुझे ये तख्त का ताज दिया है उसने ही मुझे ये लिबास दिया है। जिन्हें और जिनके भीतर उसने विकार देखा उन्हें वस्त्र दिए, और जिन्हें निर्विकार पाया उन्हें ये लिबास दिया। और जिसका कोई उल्टा और सीधा नहीं होता, जिसको एक बार पहनने के बाद उतारना नहीं पड़ते, वो लिबास वो कपड़े दिए हैं। जिनका उल्टा सीधा कुछ नहीं होता और एक बार पहनने और उसके बाद उतारना नहीं पड़ते हैं, वो लिबास दिया है जो निर्विकार। ये उनके उसमें लिखा हुआ, तो आप इसको दें, आप बताएं आप क्यों फियरफुल हैं। असल में हमारे अंदर ये सब बातें हमें नहीं मालूम होने से हमें अपने उस सब चीजों का गौरव नहीं है, और हम दूसरे के सामने बिल्कुल ऐसे चुप खड़े रह जाते कि हाँ यार ठीक तो है, सही में महाराज जी वगैरह को जब इतनी सारी चीजें तो हैं, इतनी किताबें रखी हैं, डायरी हमने ले आन के दई थी, और इतना बढ़िया भोजन दे रहे, तो थोड़ी कपड़ा भी ले लूँ उनका, हर जगह है नहीं? अच्छा ये है, तो इसमें हर जगह ऐसा अपने मन में जो है और भाव आ जाता, अपना मन ही कच्चा है। आपके पास ये जवाब होना चाहिए कि नहीं, ये भी एक फिलॉसफी है, ये भी एक आर्ट ऑफ लिविंग है। मिनिमम लेकर के मैक्सिमम देना, ये कौन सिखाता है? परिग्रह की चरम सीमा है अगर, तो एक दिगंबर साधु का निर्ग्रंथ स्वरूप है, निर्ग्रंथ विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स। निर्ग्रंथ के मायने, न्यूट के मायने क्या है? निर्ग्रंथ विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स भीतर नहीं है। ये हमें और गौरव होना चाहिए इस बात का, और ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात को बिना किसी लॉजिक के कह रहे हों। हमारे पास विद एविडेंस और विद लॉजिक इन सब चीजों के आंसर हैं। सारे सारे धर्मों में और इसको बहुत सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए हमारे यहां पर भी वह प्रक्रिया है। हाँ ठीक,
बैठ जाओ ना।
नहीं वो काम कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे वो वॉलंटियर का काम दे रहे हो, ऐसे कैसे आप नहीं कर सकते वो काम? आपको तो हेजिटेशन होगा कि लोग क्या सोचेंगे, उसको ठीक करो आप ना, बढ़िया। कई बूचड़ खाने जो कि लैदर इंडस्ट्रीज के मालिक जैन हैं, बिल्कुल है, और आजकल कई घोटालों में भी जैनों का नाम है। बढ़ती हुई इस्पात प्रवृत्ति का काम इसका वो क्या है, दो तरह के जैन होते हैं, एक बाई बर्थ बाई एक्सीडेंट है ना, और एक होते हैं ओरिजिनली जैन, जिनके जीवन में वाकई में जैनत्व होता है, जिनके भीतर में इस तरह की भावनाएं होती हैं कि अपने अपनी इच्छाओं और कामनाओं पर वे काबू कर पाते हैं, वास्तव में तो वे जैन हैं। ओ बाई बर्थ, बहुत सारे लोग जैन हैं, तो उनके बारे में हम क्या कहें बताइएगा। जैसे वैसे बहुत सारे, जैसे कि कोई बहुत मनुष्य है और मनुष्यता उसके भीतर नहीं है, तब भी आपको झेलना तो पड़ेगा, मनुष्य है। तो ऐसे ही कोई जैन है बाई बर्थ, लेकिन उसके भीतर जैनत्व नहीं है, तो सहना तो पड़ेगा उसको। अब इससे ज्यादा और अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे भी देखना पड़ता है, पर इसके लिए धर्म दोषी नहीं है। व्यक्ति जिस धर्म को फॉलो करता है, अगर वो उस धर्म की वास्तविकता को नहीं समझ करके अपने जीवन में नहीं उतारता है, तो धर्म की हंसी नहीं होती, उस व्यक्ति की हंसी होती है कि इतना बढ़िया धर्म। जैसे कि हमारे साथ में जो कलीग्स थे, और मुझे हमेशा ये चीज झेलना पड़ती थी, वो कहते थे यार मिस्टर जैन तुम भर एक अपना अलग लगाते हो, वो आलू भी खाता और रात में भी खाता और वो तो कल हमारे साथ अंडा भी खा रहा था, और तुम अपना एक अलग ही चलाते हो, क्या तुम और वो जैन नहीं हो क्या? तो मैं उनको यही जवाब देता था कि वो जैन बाई बर्थ है और मैंने बहुत मुश्किल से ये चीज पाई है। उसने तो बाई बर्थ पा ली है, पर मुझे ये बहुत मुश्किल से मिल पाई, मेरी बुद्धि में थोड़ी सी आ गई थी, इसलिए मुझे ये जैन जो है मैंने कोशिश करके और प्राप्त किया, उसको तो बर्थ से मिल गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जैन होने के बावजूद भी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो इससे हम बिल्कुल भी ना घबराएं। कोई अगर हमें ये कहे कि आपके जैन लोग भी ऐसा करते हैं, तो हमें जवाब देना चाहिए यही जवाब कि वे जैन सिर्फ नाम के लिए हैं। जैसे नाम की गाय हो उससे दूध नहीं मिलता, मिलता है? सच्ची की गाय से मिलता दूध? नाम की गाय से, फोटो की गाय से मिलता क्या दूध? नहीं मिलता। तो वैसे ही नाम के गाय, नाम के जैन है वो, उनसे क्या, उनसे कुछ मिलेगा क्या? जैनत्व की कोई शिक्षा मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसा मान करके संतोष करना चाहिए, लेकिन क्या करें, व्यक्ति कब अपनी उस मानवीयता से नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसको अपन दोषी भी नहीं कह सकते हैं। वो अपना जीवन जी रहा है, अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है कि हमको कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाए और फिर उसका हम मिसयूज करें, तो बताइए उसको क्या कहेंगे? इग्नोरेंस कहेंगे, लैक ऑफ नॉलेज कहेंगे? विज्ञान और धर्म का सामंजस्य हम अपने जीवन में कैसे बिठाएं? साइंस क्या चीज है और धर्म क्या चीज है, इन दोनों की ठीक अगर हमको परिभाषा मालूम हो, तो दोनों दो चीजें नहीं है, दोनों दो चीजें नहीं है। इनके अगर ठीक ठीक अर्थ मालूम, श्रद्धा और आचरण से समन्वित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है, विद राइट फेथ एंड विद राइट कंडक्ट, विद रियल फेथ एंड रियल कंडक्ट, नॉलेज इज रियल। वास्तव में ज्ञान वही है, साइंस वही है, विशिष्ट ज्ञान विज्ञान, एक सुव्यवस्थित और सुनिश्चित ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। कैसा ज्ञान? जो श्रद्धा और आचरण से समन्वित हो, वही ज्ञान विज्ञान। साइंस विदाउट मॉरलिटी इज ए सिन। हां, अगर साइंस में मॉरलिटी नहीं है, फेथ नहीं है, तो वो तो एक पाप है। गांधी जी तो बहुत पहले ये चीज हमेशा कहा करते थे। तो साइंस की परिभाषा क्या हुई? जिसके पास श्रद्धा भी है और आचरण की निर्मलता भी है, वो ज्ञान जो कि श्रद्धा और आचरण से युक्त है, वही विज्ञान है। और धर्म क्या चीज है भैया, मुझे बताइएगा? श्रद्धा, ज्ञान और आचरण के समन्वय का नाम ही धर्म है, इससे अलग तो कुछ भी नहीं है। हमारे अपने जीवन में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ी सी अपनी परिणामों की निर्मलता लेके ही तो अपना जीवन शुरू करते हैं। जब माँ घर से कोई बेटा बाहर जाता है तो क्या सलाह देती है? देख भाल कर चलना है, देखना दर्शन, भाल भली प्रकार से चलना ज्ञान, और चलना, चलना तो आचरण है। इन तीनों से ही सारा जीवन समन्वित है, उसी का नाम धर्म है। ये धर्म हमारे जीवन से कोई अलग चीज नहीं है, और विशिष्ट ज्ञान भी, विज्ञान भी हमारे जीवन से अलग-अलग कोई चीज नहीं है। दोनों की अच्छी, जो जिसके पास समझ है और दोनों को जो एक साथ लेके चलता है, वो बहुत आसानी से अपने जीवन को और बहुत स्मूथली और आगे बढ़ाता है। और लोग ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं? घंटा बजाना, अभिषेक करना, जय जयकार करना, पूजा करना, इसका तो नाम है धर्म। और कंप्यूटर पर बैठ करके और इंटरनेट पर सारे समाचार लेना, इसका नाम है विज्ञान, यही ना। हाँ देखना, तो फिर दोनों के बीच में कैसे समन्वय होगा बताइए? उसमें तो ना कोई पूजा हो रही है, ना कोई उसमें अभिषेक हो रहा है, ना कोई अर्घ चढ़ाया जा रहा है बताइए। और यहां तो हम दोनों के बीच हम ऐसा मोटा डिफरेंस देखते हैं। हमें देखना चाहिए कि ये तो भौतिक ज्ञान है, ये विज्ञान थोड़ी है। आप साइंट शब्द को क्या बोलते हैं, जो जीवन को अनुशासित करे। साइंट जो शब्द बना, जिससे साइंस बना है, उस शब्द के मायने क्या है? जो जीवन को अनुशासित करे वो साइंस है। और आज हमने ये जो अपनी बाहर भौतिक उपलब्धियां कर ली, उसी को हमने साइंस मान लिया, उसी को विज्ञान मान लिया, तो ये हमारी कमी कहलाएगी। हमें उसकी ठीक परिभाषा समझनी चाहिए कि विज्ञान की परिभाषा क्या है। इसी तरह धर्म की धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना वो धर्म है, या कि वाकई में अपने भीतर रिलीजियस होना धर्म है। तो इन दोनों में हमें समझ अपनी डेवलप करनी चाहिए, तो दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बैठेगा। दोनों में कोई अंतर नहीं है भैया, दोनों एक ही चीजें हैं। जहां मंदिर आदि नहीं होते, वहां पर जाने का अवसर आए तो ऐसी स्थिति में भोजन ग्रहण करें या कि नहीं करें, जहां तक हो सके तो ना करें, क्योंकि आज मुझे मेरी अपनी वास्तविकता का, मेरी अपनी जिन पर श्रद्धा है। अरे जब आपका कोई प्रियजन आपसे बिलग होता है, तब सारा दिन खाया खाया, नहीं खाया नहीं खाया, खाया भी तो ऐसे कि बस खाना पड़ रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है। और जबकि हमारे इतने प्रिय हैं वो भगवान, जिन पर हमारी श्रद्धा है, तो उनका आज दर्शन नहीं मिला तो फिर कैसा लगेगा? खाया नहीं खाया, मन ही नहीं हो रहा है, ठीक है अब दिन भर निकालना है, लाओ भाई पानी पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, जो भी है, पर आज खाया तो नहीं जाएगा, आज तो दर्शन नहीं मिले। अगर ये हमारे अंदर भाव आ जावे तो फिर कुछ कहने की, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भैया दर्शन नहीं हो तो भोजन नहीं करना चाहिए। अपन कहेंगे ये तो बड़ा ट्रेडिशनल सा लग रहा है। ट्रेडिशनल कहाँ है, ये तो हमारी अपनी श्रद्धा हमें खुद उस चीज से रोकेगी। अगर वास्तव हमारा उनके प्रति अनुराग है, श्रद्धा क्या चीज है, भगवान के प्रति अनुराग का नाम श्रद्धा है, और बाकी जो लोगों के प्रति अनुराग का नाम स्नेह है, उनके प्रेम है, और भगवान के प्रति प्रेम का नाम श्रद्धा है, इतना ही फर्क है। तो वो श्रद्धा हमारी ये सब चीजें अपने आप नहीं करने देगी। लेकिन अगर बहुत हम दिन भर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, भगवान को मन ही मन स्मरण करके, और जो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि जिससे हमारा काम दिन भर का चल जाएगा, वो लेकर के काम चलाएं, और वह कोशिश करें कि कल फिर ऐसा ना हो हमारे साथ। आज तो ठीक है कि जैसे तैसे मैंने निकाल लिया, लेकिन कल फिर ये स्थिति ना आए कि मुझे दर्शन ना मिले। ऐसा मन में भाव बनाए रखें, ऐसी जगह तो जाए ही नहीं जहां कि फिर कभी दर्शन ही नहीं मिलेंगे, क्यों जाएं? अपना मैंने सब कुछ खो करके, और हमने कुछ अगर अचीव भी कर लिया, अपनी वास्तविकता खो करके जो भी हम अचीव करते हैं वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं देता, ये ध्यान रखना। आज हम बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर चले जाते हैं, और वहां पर हम अपनी इन सब चीजों से कट हो जाते हैं, और फिर बाद में एक डिग्री लेकर के आते हैं, लेकिन वो डिग्री भी हमें कोई ज्यादा संतोष नहीं दे पाती है। अगर उसमें हमने कुछ प्लस कर लिया होता कि उस डिग्री के साथ साथ मैं जहां रहा वहां पर मैंने अपने भगवान के प्रति रोज अपनी श्रद्धा व्यक्त की, मैंने जो खाने योग्य था वही खाया, जो खाने योग्य नहीं था उसे नहीं खाया। संसार में सब जानते हैं कि क्या चीज खाने योग्य है, क्या नहीं खाने योग्य है। ये बात अलग है कि जो नहीं खाने योग्य को ही अपना खाना मान लेते हैं, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना, क्या कहना उनके बारे में। पर हम ये बात सब जानते हैं, वो जो खाते हैं वो भी ये जानते हैं कि नहीं खाने वाली चीज है जो हम खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम अपना सब कुछ खो करके और कुछ थोड़ी सी चीजें और पाप के उसमें ही सोचें कि जैसे मैंने बहुत पा लिया। महाराज, मुनियों के अधिकांश और आचार्यों के आगे सागर क्यों लिखा होता है? भैया ऐसा है, सागर शब्द जोड़ने के पीछे क्या लॉजिक रहा ये तो नहीं कह सकते, पर एक परंपरा चली आ रही है, तो परंपरा से सागर शब्द जोड़ा जाता। पर पहले ऐसा
सबके साथ जोड़ा जाता हो ऐसा नहीं था। कुलभूषण, देशभूषण महाराज, जिनसेन स्वामी, जयसेन आचार्य, समंतभद्र स्वामी, उमा स्वामी, कुंदकुंद आचार्य, ऐसे नाम हैं, हैं? फिर बात को आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, वहां से हम देखें उनके भी जो मुनि, उनके भी जो गुरु थे, देवप्पा स्वामी उनका नाम था, देवेंद्र कीर्ति महाराज, उनका भी सागर नहीं था। आचार्य चार्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के बाद हम देखें तो मैक्सिमम आपको साधु आचार्य के साथ में सागर शब्द जुड़ा पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा। उसके पहले के नामों में बहुत कम सागर शब्द का उपयोग। अब हम ये देखें कि आखिर जिन्होंने जोड़ा उनका अप्रोच क्या रहा होगा, सागर के पीछे कोई उनका कॉन्सेप्ट रहा या कि ऐसे ही जोड़ दिया सागर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सागर के महाराज जी थे इसलिए उनके नाम के साथ में सागर जोड़ दिया, ऐसा तो है नहीं। अब फिर वो अगर जयपुर के होंगे तो फिर वो उनके नाम के साथ जयपुर जोड़ना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है, है कि नहीं। उनकी अपनी कोई क्वालिटी, सागर में जितनी क्वालिटी है शायद वे एक साधु में होती है या कि होना चाहिए, अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? सागर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसके भीतर कितना भी कचरा डाल दो, वो विद इन मूवमेंट उसकी लहरों से अपने सारे कचरे को उठा करके और किनारे पर फेंक किया जाता है। सागर, ये सबसे बड़ी विशेषता है समुद्र की। नदियां ऐसा नहीं कर पाती, नदियां तो अपने साथ अपना कचरा लेकर के समुद्र में जाके फेंकती हैं, लेकिन समुद्र अपने भीतर आए हुए कचरे को और पहले नंबर उठा करके और लहरों से बाहर फेंक देता है। ठीक इसी तरह साधु के जीवन में भी संस्कारवश अगर हर्ष और विषाद दोनों ही चीजें हैं, ज्यादा एक्साइट होना या डिप्रेस होना, ऐसी कंडीशन बनती भी है, मलिनता अगर मन में आती भी है, तो वो विद इन ए मूवमेंट उसको उठा करके एक तरफ रख देता है और फिर ज्यों का त्यों लहराने लगता है, फिर ज्यों का त्यों निर्मल हो जाता है। शायद इसलिए सागर शब्द लगाया। सागर की डेप्थ कोई पा नहीं सकता और सागर अपनी गहराई में बहुत शांत है। ऊपर ऊपर बिल्कुल वाइब्रेटेड दिखाई पड़ेगा। साधु भी ऐसा ही है, वो अपने गुणों में बहुत गंभीर है, बहुत अंदर में शांत है। बाहर से वो खाते पीते आते जाते आहार इत्यादि प्रक्रियाओं में विहार करते हुए इन सब में बोलते हुए दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर में वो एकदम अपने आत्मा में शांत रहने की कोशिश करता है। ये दूसरी विशेषता है। सागर में रत्न पाए जाते हैं, सागर को रत्नाकर कहते हैं। एक साधु के पास भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न होते हैं, इसलिए शायद उसे उसके साथ में सागर शब्द लगा दिया हो। सागर में कितनी भी नदियां जाकर के मिल जाएं, लेकिन सागर अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ये सागर की विशेषता है। सागर सीमाओं में रह करके भी असीम है, बताइएगा। इसी तरह एक साधु को निंदा मिले या प्रशंसा मिले, वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कितनी भी प्रशंसा नदियों की तरह आकर के और उसमें गिर जाए, वो कभी भी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता, वो कभी एक्साइट नहीं होता, कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। यही शायद इसलिए सागर सब जोड़ा होगा। और आखिरी बात कि सागर का जल खारा है, वो अपने किनारे पहुंचने वाले किसी की प्यास बुझा नहीं पाता, बल्कि प्यास और जागृत कर देता है। इसको आप डिसक्वालिटी कहें या क्वालिटी, एक साधु के पास पहुंचकर संसार से पार होने की हमारे भीतर ललक, प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है, शांत तो नहीं होती और बढ़ जाती है। शायद ये कारण रहे हों, जो भी रहे हों, और सागर शब्द जोड़ दिया। सार्थक लगता है कि जोड़ा गया है तो वो क्वालिटी उनके भीतर होनी चाहिए, हो भी सकती हैं और नहीं है तो वो होनी चाहिए, वो उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। इन सब क्वालिटीज जो कि एक सागर में होती हैं, उन सबको प्राप्त करने के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं, इसलिए भी जोड़ा गया। भाई मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से आपको बता दिया, अब आप और भी सोचिएगा उसमें कि और कुछ भी हो सकता है। जो भी अगर जाप देते समय क्या लिखा, इधर उधर के ख्याल आ जाएं तो क्या करना चाहिए, कर लेना चाहिए, इसमें क्या। अरे जब जब आ ही रहा है ख्याल, बैठे हैं अपन चुपचाप और इधर उधर का ख्याल आ रहा है, तो जरा शांति से वही काम कर लो, 5 मिनट 10 मिनट एक ड्यूरेशन रख लो, सोच लिया उठा पटक का काम, सोच लिया इनकी उनकी याद आ गई, हाँ सब कर लो, फिर उसके बाद अरे मैं इधर तो सामायिक कर रहा था, जाप दे रहा था, और कहां कहां मन भटक गया। कोई बात नहीं, भटक गया, हमने वॉच कर लिया कि वहां जा रहा है मेरा मन। उसको आप सप्रेस करने की कोशिश मत करना, दबाने की, खींचने की कोशिश मत करना वहां से, नहीं तो वो जरूर वहां जाएगा। नेगेशन में अट्रैक्शन होता है, आप जाने दो उसको, बस देखते भर रहो। घोड़े को तो चंचल, तेज और तर्राट होना चाहिए घोड़ा। ठीक मन भी ऐसा ही है घोड़े की तरह, एकदम जागृत तेज। मरियल घोड़े से यात्राएं नहीं होती, मरियल मन से यात्राएं नहीं होती। मन तो बिल्कुल एकदम चंगा होना चाहिए बस। लेकिन सवाल यह है कि घोड़े पर बैठने वाले के हाथ में घोड़े की लगाम होनी चाहिए, हैं? ऐसे ही मन पर हमारी लगाम होनी चाहिए। कितनी देर कहां जाओगे? अच्छा वहां जाना, चलो ठीक, देख लिया, सब कर लिया, सोच लिया, वापस। द डायवर्शन ऑफ द माइंड एंड द एंगेजमेंट ऑफ द माइंड इज द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या चीज है? बाहर जाते हुए, विकृतियों में जाते हुए मन को समझा बुझा करके वापस लाना, और किसी भली जगह जहां हम चाहते हैं वहां उसको एंगेज करने की कोशिश करना। ये निरंतर चलेगा, फिर चला जाएगा, फिर हम लाएंगे, फिर यहां, यहां एक सेकंड रहेगा, बाहर को एक मिनट तक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आदत है, हमने वही आदत डाल रखी है। भैया आचार्य महाराज हमारे हमेशा कहा करते हैं कि फेन चल रहा हो अगर फुल स्पीड पे और उसको बटन स्विच को ऑफ भी कर दो तब भी 5 मिनट फोकट घूमता रहता वो। अपन ने 23 घंटे 50 मिनट मन को दुनिया में घुमाया और 10 मिनट के लिए ऐसे बैठे तो कहां घूमेगा वो? 23 घंटे 50 मिनट जहां घूमा है, 10 मिनट तो उसको वैसे ही जरा ठीक होने में लगेंगे। वो जो घूमता रहा है फोकट, एकदम तो रुकेगा नहीं। इसलिए मिनिमम टाइम रखा है 48 मिनट्स। 2 घड़ी कम से कम बैठो, शरीर को बिठाओ और वाणी को चुप रखो, फिर मन को देखो, वॉच करो कहां कहां जाता है। अपन आश्चर्य करेंगे कि जब हम काम में लगे थे तब कुछ भी चीज याद नहीं आ रही थी, और जैसे ही बैठे और दुनिया भर की बातें जिनको हमने कभी सोचा नहीं था, ऐसी सड़ी सड़ी बातें, हाँ कहां कहां की बातें आएंगी जो बिल्कुल, क्यों? क्योंकि काम से हाथ रुक गया ना, कहीं एंगेज था हम एंगेज थे, और अब हम एंगेज करना पड़ेगा। अभी तो हमने बाहर से अपने को लगा रखा था, अब हमें इसके लिए प्रयास करना। साधना यही तो है, और क्या साधना है? शांत बैठ करके अब जाते हुए मन को वॉच करना, कहां जाता है, कैसी कैसी मेरे अंदर संस्कार, कैसे खोटे खोटे विचार मेरे अंदर भरे हुए हैं। मैं खुद नहीं जानता जिन जिन खोटे विचारों को, वे सब सामने आते हैं। तो अपने से मुखातिब होना, अपने से आमना सामना करना कि ये इतना गंदा मैं हूं, इतनी गंदी गंदी बातें सोच रहा हूं, हाँ ये मैं ऐसा हूं भीतर, मुझे इसको सब हटा देना है। अच्छा है, अभी निकल जाए ये सब बातें, मैं इसमें से पूरी एक भी नहीं करूंगा। मन तो ये कह रहा है कि चलो वहां पर, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊं, स्वयं बैठे तो यहीं रहूंगा, जाने दो, वहां जाने दो, अपने आप आओगे बच्चू हार करके, जाओगे कहां? हार हूर के मन और वहीं वापस लौट आता है, कितने भी यात्रा कर लेवे और हम उसके साथ नहीं जाएं, बस हमारा शरीर अगर उसके साथ नहीं जाए तो मन को मारने के लिए एक साधु ने एक प्रयोग किया था। वो बाबा जी थे तो वो अपना दाल बाटी वगैरह उनके बहुत मन में था कि खाते एक आध दिन दाल बाटी, कौन देता बाबा जी को दाल बाटी, पर उनका मन हुआ कि दाल बाटी खाएं, तो उनने सोचा कि अपन अपनी बना लेंगे, कोई से मांगे क्यों। तो आटा ले लिया और दाल ले ली, और कुछ बर्तन बर्तन नहीं था तो उसी में बना बनू करके और बाटी बनाई, और नदी के किनारे बनाई, नदी से थोड़ी दूर रेत में, बढ़िया साफ जगह में। अब क्या हुआ कि बनाते बनाते पानी खत्म हो गया। अब पानी खत्म हो गया तो अब अगर खाएंगे तो पानी के लिए वहां जाना पड़ेगा, या तो पहले पानी भर के ले आए फिर खाएं, या कि पहले खा लें फिर पानी भरें। अब बड़ा कंफ्यूजन। हाँ अब मन, एक मन कहे खा लो, इतने दिन से तो बनाई, मुश्किल से तो बनी, खा लो पानी बाद में पी लेंगे, और दूसरा मन कहे कि नहीं पानी भर लिया फिर पियेंगे आराम, फिर खाएंगे बैठ करके। बड़ा कसमाकस के बाद और वो उठे और पानी भरने चले गए। लेकिन सारे रास्ते यही विचार आता रहा मन में कि खा लेते खा लेते। और वहां से लौटे पानी भर के। देखने वाले कहते हैं उन्होंने जो देखा कि उस बाबा ने आते ही साथ पानी का लोटा नीचे रखा और जितनी बाटियां बनाई थी, दाल बनाई थी, सारी उठा के इतने जोर से फेंकी कि सीधी जाकर के पानी में गिरी और एक मुट्ठी वही राख जो पड़ी थी उस पानी में डाली, घोली और पानी पी गया और आगे बढ़ गया। एक ने कहा, क्या करते हैं बाबा जी आप, इतनी बढ़िया बाटी बनाई थी, दाल बनाई थी, खाई क्यों नहीं? बोले, ऐसा ही मानेगा ये, ऐसे ही मानेगा। कौन कौन है वहां पर? ऐसे ही मानेगा? आप कुछ नहीं कह रहा है? पहले तो कह रहा था खा लो खा लो, वहां तक पानी लेने जा रहा था तो कह रहा था कि खा लो। अब शांत है, अब 20 किलोमीटर चलेगा ये, आराम से चलेगा। इस मन की अगर करते रहेंगे तो ये हमारे लिए हमेशा तकलीफ ही देगा। मन को मारना नहीं, मन को समझा देना, मन को दिशा दे देना, क्योंकि हम तुम्हारी सारी बातें नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अज्ञानतावश हमने ऐसे संस्कार डाले हैं। अब हम ज्ञान पूर्वक उन मन के संस्कारों को ब्रेक करना चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं। मनमानी करने से कभी भी कोई कहीं नहीं पहुंचता। छोड़ दीजिएगा 8 बजे से और अपन फिर बैठेंगे और 8:15 बजे से इन क्वेश्चंस के, जिसमें से मैं सिलेक्ट कर लूँगा, कुछ तो कॉमन निकलेंगे जो कई लोगों के होंगे, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस के, और नहीं हो पाएगा तो कल जब आप 10:30 बजे मेरे पास से चले जाएंगे, जिनको आहार देना होगा वो थोड़े देर से जा पाएंगे, उनकी गाड़ी 11:30 बजे जा पाएगी। जिनको वैसे जाना तो 10:30 पे जाएंगे और जयपुर और वो घूम करके 4:45 बजे यहाँ लौट आएंगे, तो फिर अपन 4:30 पे फिर बैठेंगे। तो कल अपने पास 8:15 बजे से भी टाइम है, फिर शाम को भी है, क्योंकि फिर अच्छा फिर परसों 13 को भी क्वेश्चंस, आप सारे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, इनके आंसर्स जो है किताबों में लिखे हुए एकदम नहीं मिलेंगे आपको, तो ये आंसर्स आप जरूर से पूछ लें। प्रवचन तो हमेशा सुनते ही रहते हैं, है कि नहीं? फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी हो और ये दोनों चीज़ें मिल सकें। 3 टाइम है अपने पास, कल का, सुबह का, शाम का और परसों सुबह का। फिर तो सब तय है कि विदा लेंगे, है कि नहीं? पढ़ाई भी पढ़नी है। अपन इसका आंसर देखें कि शोर शराबा बहुत है, ठीक है, ये तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अपन इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते। बाहर बहुत शोर है, पॉल्यूशन बहुत है, नॉइस बहुत है, तब ऐसी स्थिति में हमारे अंदर कंसंट्रेशन, और वो भी कंसंट्रेशन पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए क्या करें, तो उसके लिए प्रक्रिया है। सुबह शाम थोड़ा सा 10 मिनट निकालें और किसी एक ऐसे कॉर्नर पे बैठ जाएं जहां की डिस्टर्बेंसेस कम हो। कुल 10 मिनट भी मैंने ज्यादा कह दिया, 5 मिनट बैठना है अपने को और शांत होकर के अपन बैठ जाएं। रोज का अभ्यास करना पड़ेगा, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, अपने पढ़ाई के बीच में से निकाल लें। वहीं सीट पर ही बस थोड़ा ये करना पड़ेगा कि पैर लटकाए ना रह करके और जरा अलती पलती मार करके वहीं पर बैठ गए अपन, और बैठ करके जो है आंख बंद करने में अच्छा लगे, खोलने में अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे, जिस पॉस्चर में आपको अच्छा लगे, इजी फील हो, 5 मिनट तक आपको बार बार पैर ना हिलाना पड़े, ऐसा तय कर लें। तो फिक्सेशन ऑफ पोजिशन, फिक्सेशन ऑफ टाइम, एक निश्चित समय कर लें कि सुबह 6 बजे, शाम 7 बजे। तो 7 बजने में 5 मिनट पहले हमारे भीतर कोई कहना शुरू करेगा कि टाइम हो गया, बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाएगी कुछ दिन के बाद, जैसे खाने की और सोने की क्लॉक होती है, समय हो गया। इसी तरह हमारे कंसंट्रेशन का समय हो गया है ये मालूम पड़ जाएगा। फिक्सेशन ऑफ पोजिशन, फिक्सेशन ऑफ प्लेस, किस जगह रोज बैठना है ताकि वो फील्ड चार्ज हो जाए, और उस फील्ड में जाते ही साथ जैसे अपन मंदिर में जाते हैं, भैया यहाँ पर गुस्सा उस्सा नहीं करना है, ना किसी को गाली देना है, अच्छा अच्छा कुछ करना है यहाँ, वो एरिया हमें क्या दे रहा है मैसेज, ठीक इसी तरह से ये तो मेरे जो जगह है वो पढ़ने की है, कंसंट्रेशन की है, उस पर मैं बैठ गया हूँ। फिर फिक्सेशन ऑफ मंत्र, कोई एक मंत्र, अरन सिद्ध, ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमो अरिहंतानम, जो भी आपको ईजी लगे, ओम अकेला, अब बैठ गए हैं और शांति से उसको शुरू करें, पहले जोर से, फिर होंठों में, फिर मन में, एक साइकिल बन गया, नमो अरिहंतानम, फिर होंठों में, सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि कोई अभी भी बोल रहा है। इतने जोर से हमने बोला नमो अरिहंताणम कि हमने ही सुना, और ऐसे सुना जैसे किसी ने हमारे लिए बोला हो, और फिर होंठों में फिर भी ऐसा लग रहा है कि सुन रहा हूं, फिर होंठ भी नहीं हिले मन में, और फिर भी लग रहा है कि नमो अरिहंताणम कोई कह रहा है, फिर जोर से, फिर होंठों में, फिर मन में, फिर जोर से, 5 मिनट तक अपने को इस साइकिल में अपन घुमाएं और बस फ्री। अब हम पढ़ने के लिए तैयार, हमारी बैटरी चार्ज। ये जो है पढ़ने से पहले भी कर सकते हैं और सुबह शाम इसका अभ्यास कर लें तो आपको कंसंट्रेशन बनाने में आसानी होगी। अब रही बात 7-8 घंटे लगातार पढ़ने की, तो एक व्यक्ति का मैक्सिमम आईक्यू होता है 56 मिनट। बहुत एडवांस अगर किसी का बहुत इंटेलेक्चुअल है तो 56 मिनट तक लगातार पढ़े और मेमोरी में क्लोज होता जाए, 56 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। आज हम लोगों का आईक्यू सिर्फ 20 मिनट का है, हम 20-25 मिनट तक लगातार पढ़ सकते हैं और मेमोरी में क्लोज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्लोज नहीं होगा, फिर तो सिर्फ पढ़ेंगे काम चलाने के लिए, पन्ने पलटे जाएंगे, आधा अधूरा समझ में आएगा। अब कैसे पता करें कि 20 मिनट है कि 15 मिनट, ये भी छोड़ो, अपन ने तो बुक पढ़ना शुरू की, एक पेज पढ़ा एकदम बढ़िया समझ में आया, दूसरा पढ़ा ठीक है, तीसरा पढ़ा, तीसरे के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते और चौथे की शुरुआत में वो पहले वाला तो कुछ भी याद नहीं, अब परेशानी, अब डिप्रेशन। अगर ऐसे ही चला तो 300 पेज की किताब है और अभी से भूल गया हूं। खैर फिर भी कौन पीछे का पढ़े, आगे ही पढ़ो, कुछ तो आएगा समझ में, पढ़ो और पढ़ते हैं, नहीं बनता कंसंट्रेशन। अब क्या करना, तो फिर तो अपना आईक्यू मालूम पड़ गया कि 3 पेज बढ़िया से क्लोज होते हैं। अब जरा ब्रेक करो, 5 मिनट का ब्रेक 3 पेज पूरे पढ़ने के बाद, इन 3 पेज को सिंबॉल ए, उसके बाद के 3 पेज को सिंबॉल बी, आगे के 3 पेज को सिंबॉल सी। बिफोर द क्लोजिंग बी रिकॉल ए, बिफोर द क्लोजिंग सी रिकॉल ए एंड बी। जरा टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन हमारी मेमोरी में प्रॉपर फीडिंग होगी तो हम रिकॉल भी कर सकेंगे। मेमोरी में क्लोज कर लेना कोई भी कर लेता है, लेकिन रिकॉल प्रॉपर कर सकें ये माना जाएगा आपकी रिटेंशन पावर कितनी है, आप कितनी देर तक उसको अपने भीतर रख करके और रिकॉल कर सकते हैं। सुबह का पढ़ा हुआ आप शाम को कितनी जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, ये आपकी पावर कहलाएगी, इंटेलिजेंसी तो ये कहलाएगी। तो उसके लिए फीडिंग करते समय 3 पेज पढ़ने के बाद जरा 5 मिनट का ब्रेक, और उस 5 मिनट के दौरान रिकॉल करें, देखें पहला वाला पेज, हाँ पहले वाले पेज में ये 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 बन रहा, ये फिर नहीं बन रहा, अच्छा देख लेते हैं ये वाला ठीक है, ये भी ठीक, दूसरा वाला पेज पढ़ना शुरू, तो शुरू से ही गड़बड़ हो रहा है, दूसरे वाले पेज में पहला तो फिर भी आधा सा ठीक बना था, दूसरे वाले में पहले से ही, लेकिन एक बार देखेंगे दूसरा पेज सब ठीक क्लियर हो गया, तीसरे वाले पेज को एक बार देखा क्लियर। अभी तो रिकॉल करने में हमें देखना पड़ा है, पहली बार है क्योंकि रिकॉलिंग। अब हम क्लोज करके आगे के 3 पेज पढ़ने के लिए तैयार हैं, 3 पेज पढ़ने के बाद फिर हम रिकॉल करके देखेंगे, अब की बार हमें रिकॉल करने में कम टाइम लगेगा और हम जल्दी से कर पाएंगे, और हमारी रिकॉलिंग भी, आप आश्चर्य करें कि जब आप 30वां पेज पढ़ रहे हैं तब आप 10 बार पहला पेज रिकॉल कर चुके हैं। अब उस पहले वाले पेज में से कहीं से कोई भी पूछ ले, किसी भी तरह से पूछ ले, मुझे कोई परेशानी नहीं। टाइम जरूर ज्यादा लगेगा लेकिन एक बार अभ्यास हो जाने पर आप आश्चर्य करेंगे कि जब आप रिकॉल करने बैठेंगे तो आपने आंख बंद करी और ऐसे 3ों पेज, ऐसे जो 3 या 4 जो पेज आपने पढ़े ऐसे सामने आ जाएंगे और आप खुश आगे बढ़ो और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि रिकॉलिंग अगर आपकी बढ़िया है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि बस ये तो अपन निश्चिंत हो गए, इसमें कितनी बार रिकॉल करके देख लिया, सीधे 3ों पेज एकदम सामने आते हैं, बढ़िया फीलिंग हुई है, बढ़िया अच्छे से क्लोज हुई है मेमोरी में। अगर इस तरह से अपन कंसंट्रेशन पढ़ाई में करेंगे, और एक सिंबॉलिक प्रोसेस होती है, जिन चीजों को हम नहीं याद रख पाते उनको हम सिंबॉल के फॉर्म में याद रखें, पूरे पैराग्राफ पूरे पेज को एक पेज की तरह नहीं पढ़ें, 3 पार्ट में पढ़ें, अलग अलग पैरा बना लें और उसका जिसमें ज्यादा मुश्किल हो उसका स्टार या प्लस या कोई भी एक सिंबॉल आप आश्चर्य करेंगे कि आपको जब भी उस बारे में कोई भी चीज मन में आएगी कि क्या था, तो आपको सिंबल और उसके आगे लिखी हुई चार लाइनें, अगर इसके बाद भी याद नहीं होती जो चीज फार्मूला, मान लो अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूला, अब CH और 3 और CH, अब क्लोरो, हमको तो बहुत मुश्किल पड़ती थी उस समय में कि हमको क्लोरोफार्म का हम भूल भूल जाते थे उसमें, CCl3 वाला, अब वो CHCl3 अभी भी भूल गए, तो CCl बोल दिया, CHCl3। तो इसको क्या करना फिर, इसको करना कि उसको लिख लो अपने, जो भूल जाते हैं बार बार, खूब याद करने के बाद भी भूल जाते हैं, उसको लिख करके अपने कांच के नीचे टेबल पर रख लिया, और पढ़ना नहीं उसको, सिर्फ एक बार देखना, गौर से देखना, बस दिन भर में एक बार जरूर देखना, नहीं हो अपने दीवार पर चस्पा कर लेना ये, और रोज एक बार देखना उसको, हो सकता है कि ऐसे में भी ना हो तो एंट्रेंस गेट पर जो है वहां चस्पा कर लेना, जाते समय देखना, आते समय फिर देखना, फिर उसके बाद आप आश्चर्य करेंगे कि अगर पेपर में आ गया है तो आप जैसे ही याद करेंगे कि वो जो दरवाजे के कॉर्नर पर वो जो लिखा हुआ था, वो ज्यों का त्यों लिखना, ज्यों का त्यों लिख दो, वापस आगे कोई पूछेगा क्या लिखा, मालूम नहीं पर लिखा पूरा एकदम एग्जैक्टली जैसा है वैसे ही आप करके देख लेना, वो मेमोरी में हमारे विजन से ज्यादा जल्दी क्लोज होता है स्टडी की अपेक्षा। जो चीजें हम देखते हैं वे हमारे ऊपर बहुत गहरा असर डालती हैं, जो चीजें बोल के कही जाती हैं उन पे तो हमें कंसंट्रेशन करेंगे तब मेमोरी में फीड होंगी, लेकिन इनमें हमें कंसंट्रेशन नहीं करना पड़ता, हमने तो देखा और हमारे अंदर फीड हो गया। तो ये इस तरह से इंडिकेशन वाली प्रोसेस भी हैं बहुत सारी। हमारे साहब थे वो हमको ये सारी चीज़ें बताया करते थे, SK बाबू कर्नाटका के थे, अब तो नहीं रहे वो, और उन्होंने ये सारी चीज़ें, वो कहते थे प्लेइंग कार्ड्स खेला करें, तो हम लोगों ने सब प्लेइंग कार्ड्स खेलने का है, टाइम कहाँ मिलता है, तो बोलते नहीं खेला करें जब कभी खाली टाइम हो, तो कैसे खेला करें, तो फिर फैमिली होती है 52 फैमिली होती बायो में, और हम लोग तो बायो नहीं था, हमारा तो पैलेंटोलॉजी था, बायो का एक दूसरा रूप है वो, तो पैलेंटोलॉजी में भी वही सब फॉसिल्स के बारे में पढ़ना पड़ता, तो 52 फैमिली उसमें भी होती, तो वो कहते थे कि 52 पत्ते होते हैं, सब पर फैमिली, उनकी जीनस वो सब लिख लो, उस पर उनकी स्पीसीज लिख लो और फिर खेलो। तो जब चिड़ी का एक का डाला था तो चिड़ी का एक का नहीं दिखेगा, उस पर जो फैमिली लिखी उसकी जीनस लिखी वो दिखेंगे। तो याद करना परीक्षा में कि वो वाली फैमिली, वो तो चिड़ी के कर पर थी, क्या क्या थी, तो चिड़ी के कर पर आप आश्चर्य करेंगे, ऐसी 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 चीजें वो, हाँ है तो प्लेइंग कार्ड्स हैं, लेकिन प्लेइंग कार्ड्स के साथ हमारा जो अटैचमेंट है, क्योंकि उन चीजों को हम बहुत जल्दी जानते हैं, एकदम दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये, और उसके साइड में क्या लिखा था फौरन। ये मेमोरी को किस तरह से शॉर्प बनाए, उसकी और भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, आपको जो अच्छी लगे उस प्रकार से कर सकते हैं, और ब्रेक करके जरूर करें, आपको 7-8 घंटे नहीं, 14 आवर्स तक मैक्सिमम, मैं अपने जीवन में मैंने 14 घंटे 24 में से, और स्टडी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन बस ब्रेक करना, रेस्ट पूरा देना, इससे अगर काम लेना है तो इसको बीच बीच में रेस्ट देते चले जाना। रिकॉल करें या कि कुछ नहीं करें, खाली बैठे शांत, कोई नई फीडिंग नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी चीज को लेकर वरीड हैं, शांत है, वो हमारा गैप है, 5 मिनट का हो सकता, फिर अगली बार 2 मिनट में भी उतना ही रेस्ट में हमें फिर से एनर्जी चार्ज हो जाए। एक्चुअली क्या है कि हमारे अपने जो मेंटल पावर है और फिजिकल पावर है, दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन है, और वो एक स्थिति के बाद गड़बड़ा जाता है। तो फिजिकली तो हम बैठे हुए हैं और कंसंट्रेशन पूरा बना रहे हैं, पर दोनों के बीच में जो समन्वय है, हमारे यहाँ आचार्य श्री इसको बोलते हैं ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीर्यांतराय का क्षयोपशम, जब दोनों होंगे तब, अगर ज्ञान का तो बहुत क्षयोपशम है और शरीर में कमजोरी है, याद व्याद नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, और शरीर तो बहुत बलवान है, और अगर क्षयोपशम कम है तब भी नहीं बनेगा, दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन, शारीरिक और मानसिक बल दोनों की ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, अगर वो ब्रेक हो गई तो गड़बड़। तो इसलिए हमने 5 मिनट अपने मन को भी और शरीर को भी रेस्ट, फिर से चार्ज हो जाए और फिर से हम पढ़ने के लिए तैयार, और या कि हम उसमें रिकॉल कर लें, या रिकॉल के लिए 5 मिनट अलग रखें और रिकॉल करने के बाद तुरंत फीड नहीं करें, फिर भी ब्रेक करें, रिकॉल करने के बाद में आप करके देखिएगा। मैं प्रैक्टिकली मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और उससे आपको लाभ मिलेगा। बेटे 5 मिनट सोने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी। ये विनोबा किया करते थे कि मैं सो के आता हूँ 5 मिनट में, वो अपन नहीं कर सकते। वो 5 मिनट में खर्राटे भर के आते थे और बढ़िया से और लेटे और सो गए और ठीक 5 मिनट के बाद जब नायडू पहुंचती थी उनके पास में, नॉक करती थी तो फौरन उठ करके बाहर आ गए। बोले क्या कर रहे थे बापू आप? बोले नायडू को टाइम दे रहा था, नायडू ने उनसे टाइम लिया था कि मेरे लिए टाइम देना आप, उस जो मेरे लिए टाइम दो उसमें आप सोना, क्योंकि वो सोते नहीं थे, बहुत कम सोते थे बापू, तो उनको सुलाने के लिए क्या कहा था कि मेरे लिए 5 मिनट दो आप। बोले क्या करेगी तू 5 मिनट का? कुछ भी करें आप चुपचाप बैठना, वो मेरे लिए जा रहे हैं 5 मिनट, ऐसा करके दो आप। तब वो 5 मिनट में सोने की आदत थी उनकी, 5 मिनट बैठे अब भी सो के आता हूं, तो अपनी वैसी आदत नहीं। अपन अगर 5 मिनट सोएंगे तो 55 मिनट अपने खराब हो जाएंगे, इसलिए कृपा करके ऐसे उपद्रव में नहीं पड़िएगा आप। आपको अगर वाकई में हां सोने का मतलब है कि जिसके बाद हम फ्रेश हो जाए, श्रम और खेद को दूर करने के लिए जो निद्रा ली जाती है वो वास्तविक है, और श्रम और खेद दोनों हमारा इतना नहीं है हमारे ऊपर बल हमारा कि हम जल्दी से उसको दूर कर सकें, इसलिए या तो फिर अपने टाइम में से और बीच बीच में दिन में सोने की आदत को थोड़ा सा कम करें। पढ़ने वाले को लगता है कि वो दिन में सोएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन दिन में सोने की आदत वाला व्यक्ति ज़्यादा, मैंने मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होगा जो घंटों घंटों दिन में सोता है और रात में पढ़ता है। अब संभव है कि हो सकता है कि वो विदेश के संस्कार लेके आया हो और उसकी संभव है कुछ लोगों के साथ, नहीं तो आप अभी यहीं खड़े होकर कहो कि मेरे तो 84% आए और मैं तो दिन में सोता हूं, तो हाथ कंगन को आरसी की क्या, फिर आप तो सामने ही है। तो फिर हो सकता है कि आपकी जो क्लॉक है वो विदेश से रिलेटेड हो और आपका दिन उसी समय होता हो 10 बजे, तो आप 10 बजे सो के उठेंगे और आप सोएंगे कब? आप 12-2 बजे तक सोएंगे, हो सकता है ऐसा भी संभव है। मैं नहीं कह रहा हूं, कई लोगों की क्लॉक जो है वो सोने की इसी तरह या तो डिस्टर्ब हो गई है या कि ऐसी बनी हुई है पहले से ही, तो फिर इस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से अपने क्लॉक को करते हैं। आप कोशिश करें कि हमारे रेस्ट के क्षण भी हों और हमारे श्रम के क्षण भी हों, दोनों के बीच एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 5 मिनट 10 मिनट में तो रेस्ट किसी को भी नहीं होता, रेस्ट का टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम में रेस्ट करेंगे और अपने हाथ में रहे तो बढ़िया, अच्छी बात। अब बाकी बाद में, क्योंकि अभी फिर इन लोगों को खाने पे भी जाना ना। अरे मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों
का उपकार करूं औरों का उपकार करूं।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की।